भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या 32 पृष्ठ संख्या चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयं रूपः कदमयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मदृच्छया च उपपन्नम अपने आप जो प्राप्त हुआ है, है? स्वर्ग द्वारम स्वर्ग प्राप्ति का द्वार अपने आप जो प्राप्त हुआ है, है? अपावृतम जो खुला हुआ है, है? स्वर्ग जाने का खुला हुआ द्वार अपने आप प्राप्त हो गया है, है? सुखनः क्षत्रियः पार्थ जो सुखी क्षत्रिय हैं या भाग्यशाली क्षत्रिय हैं हे अर्जुन वो प्राप्त करते हैं। लभन्ते युद्धम ईदृशम इस प्रकार का युद्ध, तो जो युद्ध है ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, ये भगवान कह रहे हैं। अब तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या बतला रहे हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। ये अर्जुन ने कहे थे शब्द, प्रभुपाद जी याद दिला रहे हैं हमको कि अर्जुन ने पहले ये शब्द कहे हैं। क्या क्या शब्द कहे? पहला तो ये कहा है कि कुछ लाभ नहीं होगा, क्या लाभ होगा अर्जुन ने कहा, और दूसरी बात ये कही कि शाश्वत वास नरक में होगा। अब देखिए निकालिए पहले अध्याय का श्लोक संख्या देखिए 8 कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भवति तनु सुश्रमा। हे प्रजापालक कृष्ण मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो अर्जुन का ये कहना है नरके नीतम वासो निश्चित रूप से वास करते हैं, और अनितम वासो इसका दूसरा पाठ ये भी है नरके अनितम वासो अनित का मतलब असीमित काल तक अनंत काल तक नरक में वास होगा। तो अर्जुन ने कहा और भगवान क्या कह रहे हैं स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग प्राप्ति का द्वार है, है ना। अच्छा और अर्जुन ने ये भी कहा कि क्या फायदा है इस युद्ध करने से क्या फायदा है ये भी देखिए कहाँ पर है। गोविंद किम भोगे जीवितेन वा, इस राज्य से क्या फायदा है। अर्जुन कहते हैं इन भोगों को प्राप्त करके क्या फायदा है, इस जीवन से क्या फायदा है। अर्जुन ने कहा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखाने चा, जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं और सुख चाहते हैं, तैमे वस्तुता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, वे ही इस युद्ध में अपने प्राणों को और धन को त्याग कर खड़े हैं। फिर अर्जुन कह रहे हैं आचार्य पितरः पुत्राश्च तथैव च पितामह, मातुला ससुरा पौत्रा शैला संबंधिनः तथा एतान्नहम् इच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं मारा जाऊं तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता हूं। किनको? आचार्य हैं और चाचा हैं, पुत्र हैं और बाबा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और संबंधनी। अभी त्रिलोक के राजस्व हेतु किम न मही करते, इस पृथ्वी की बात तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी अगर मिलने वाला हो तो भी इनको मैं नहीं मारना चाहता। न्याद धात राष्ट्रान का प्रीति ही जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी या हमें क्या लाभ होगा। तो इस तरह से अर्जुन ने कई स्थानों पर कहा है कि कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, और ये कहा कि नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन आज के श्लोक में भगवान अर्जुन के उस तर्क का खंडन कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं नरक की प्राप्ति होगी, जबकि भगवान कहते हैं कि स्वर्ग का तो खुला हुआ द्वार, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार इसका मतलब है कि बिना प्रयास के स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग जाने के लिए व्यक्ति को बहुत से तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बहुत से व्रत करने पड़ते हैं, दान करने पड़ते हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं, है ना। लेकिन यहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति तो कम से कम है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। स्वर्ग से ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन स्वर्ग तो कम से कम है ही है, मिलना है ना, इतना लाभ तो निश्चित है, भगवान बता रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे, वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। ये मूर्खों का सिद्धांत है युद्ध भूमि में अहिंसक बनना। ये युद्ध भूमि में आए क्यों, यहां पर प्रश्न नहीं उठता है कि फिर युद्ध भूमि में आए क्यों है? तो जब किसी भी कार्य के लिए अगर कदम बढ़ा लिया तो फिर कदम हटाना ठीक नहीं है। जो कुछ भी सोचना समझना है वो कार्य के पहले है करना चाहिए, लेकिन काम जब शुरू कर दिया और कोई कार्य निश्चित कर लिया फिर नहीं सोचना चाहिए है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां युद्ध भूमि में आकर के अब विचार कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए ये उचित नहीं है, ये मूर्खों के लिए, जबकि ब्राह्मण के लिए ठीक है। ब्राह्मण युद्ध भूमि में नहीं आता है, लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होता है, है ना। तो ब्राह्मण पहले से ही निश्चित होता है कि मुझे ये नहीं करना, लेकिन क्षत्रिय पहले करना है फिर नहीं करना, फिर करना फिर नहीं करना, ये ठीक नहीं है, क्षत्रिय के लिए ठीक नहीं है। आगे पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का धर्म है जाए, क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है, अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। तो क्षत्रिय के ये कार्य हैं, एक तो है रक्षा करना ना? किसकी रक्षा करना? प्रजा की रक्षा करना। जो निर्दोष प्रजा है उसके अधीन है उसकी रक्षा करना है? और शस्त्र पाणी प्रदंडन, और दूसरा कार्य है छत्री का दंड देना, दंड देना है? और उस दंड में कई प्रकार के दंड होते हैं, किसी को मृत्यु दंड भी दिया जाता है। मृत्यु दंड से लेकर के जितने भी दंड हैं वो सब प्रकार के दंड छत्री का ये कार्य दूसरा है। पहला तो होता है रक्षा कार्य और दूसरा होता है दंड कार्य और तीसरा होता है निर्जित पर सैन्यादि, शत्रुओं की सेना को जीतना, शत्रुओं की सेना को जीतना, अपने राज्य को बढ़ाना, ये तीसरा कार्य है क्षत्रिय का। और चौथा कार्य क्या है? चितिम धर्मेण पालयेत, कि धर्म को फैलाना, प्रजा में धर्म को फैलाना, धर्म की स्थापना करना, ये क्षत्रिय कार्य है, है ना? और ये किसने कहा है? पराशर स्मृति में पराशर मुनि ने ये क्षत्रिय के कार्य बतलाए हैं, है ना? तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि युद्ध में अगर वो मारा जाए तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। ब्राह्मण के लिए नहीं है, ब्राह्मण का अच्छा होता है अगर तपस्या में उसका शरीर छूटे तो ब्राह्मण के लिए अच्छा है, और क्षत्रिय के लिए अच्छा यही है कि युद्ध में उसका शरीर छूटे, है ना? जैसे कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो आप जानते हैं अभिमन्यु की माता का नाम क्या है? अभिमन्यु की माता कौन है?
उत्तरा,
सुभद्रा। अभिमन्यु की माता सुभद्रा है, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा परीक्षित महाराज की माता है, परीक्षित की माता है पर अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, ठीक है? और सुभद्रा अभिमन्यु की माता है। अभिमन्यु की जो मृत्यु हुई महाभारत के युद्ध में तो ये बहुत ही दुख की बात थी। क्यों? क्योंकि सुभद्रा किसकी बहन है? भगवान कृष्ण की बहन है, भगवान कृष्ण की, साक्षात कृष्ण की बहन का लड़का मारा गया है। और सुभद्रा बहुत रोई और भगवान कृष्ण से बोली कि भैया तुम्हारे रहते हुए मेरा लड़का मारा गया। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अरे बहन, इस प्रकार की मृत्यु तो हम लोग भी चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सुभद्रा से, अरे बहन, इस प्रकार की मृत्यु तो हम लोग भी चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसे जो भी हो, सुभद्रा को सांत्वना मिली या नहीं मिली, लेकिन भगवान कृष्ण का ये उत्तर था सुभद्रा को, मतलब ये क्षत्रिय धर्म का जो उदाहरण भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे रहे हैं, यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा। ये तो जो वीर छत्री होते हैं तो युद्ध में उनका जो है दोनों तरफ क्या लाभ है, दोनों प्रकार से लाभ है। या तो वो मारे जाएंगे तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, और या फिर जीतेंगे तो पृथ्वी प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं बताया गया कि वो युद्ध छोड़ करके भागे, डर करके भागे, अपनी पीठ दिखलाए, ये नहीं है। ये चंद्रवंश की एक शाखा है। अर्जुन जिस वंश में पैदा हुए हैं तो ये चंद्रवंश की एक शाखा है। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया है, है ना? और चंद्रमा के ही वंश में महाराज यदु हुए हैं, तो यदु तो चंद्रवंश की मुख्य शाखा है। यदुवंश और चंद्रवंश एक ही है, एक ही शाखा है, मतलब चंद्रवंश के वृक्ष में यदुवंश ही मुख्य शाखा है। लेकिन यदु के छोटे भाई थे पुरु, है ना? तो पुरु के वंश में जो पैदा हुए हैं ये अर्जुन है, पौरव, उसको पौरव बोलते हैं, पुरु के वंश में पैदा हुए वो पौरव कहलाते हैं। इसी वंश में फिर महाराज भरत हुए हैं, शकुंतला के पुत्र भरत, इसलिए इसको भरत वंश कहा जाता है। तो बहुत श्रेष्ठ ये वंश माना जाता है भरत वंश। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कई बार भारत कहा है, भारत है ना। जैसे देखिए श्लोक संख्या 30 में भगवान ने अर्जुन को भारत शब्द से संबोधित किया है। भारत कहकर के भगवान अर्जुन को क्या याद दिला रहे हैं कि महाराज भरत के वंश में तुम पैदा हुए हो। अब जिसने भरत के चरित्र को पढ़ा है, सुना है ना, तो वो समझ सकते हैं कि भारत शब्द से कितना गौरव मिल रहा है अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं भारत है ना। तो महाराज भरत का जो चरित्र है ये श्रीमद् भागवत के नवे स्कंद में वर्णित है। भरत महाराज शकुंतला के पुत्र थे, ये महाराज दुष्यंत के पुत्र थे। इन्होंने गंगा के तट पर भी सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं और यमुना के तट पर भी सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं। और इनके नाम पर जो है पूरा वंश जो है भारत कहलाता है। तो ये जो है मतलब बहुत शक्तिशाली राजा हुए हैं, महाप्रतापी राजा हुए हैं। इतना इनका प्रभाव था, इनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन हाँ इनके जो पुत्र हुए तो अपनी पत्नियों को इन्होंने एक बार कहा कि तुम्हारे जो पुत्र हैं वो मेरे समान नहीं है, मेरे जैसे स्तर के नहीं है। तो उनकी पत्नियों को इतना डर हो गया, उनकी पति ने ऐसा कह दिया कि हमारे पुत्र जो है हमारे पति के स्तर के नहीं है। तो इस डर से कि पति हमारा त्याग ना कर दे, उन्होंने अपने पुत्रों को मार डाला। कौन माता है जो अपने हाथ से अपने पुत्र को मारे, लेकिन इनकी जितनी पत्नियां थीं उन सब ने अपने पुत्रों को मार डाला। क्यों? क्योंकि बहुत डर हो गया उन्हें कि कहीं पति हमारा त्याग ना कर दे। तो फिर इनका जो वंश था वो फिर नष्ट होने लगा। अब कौन इनके बाद राजा बनेगा? तो देवताओं ने एक बच्चा स्वर्गलोक से ला करके दिया राजा भरत को, किसको आप अपना उत्तराधिकारी बनाइए, इसको अपना आप पुत्र बनाइए। तो वो बच्चा था भरद्वाज। तो भरद्वाज को फिर जो है भरत के जो है बाद राजा बनाया गया। तो यही भरद्वाज है राज्य करने के बाद और कुछ पुत्र उत्पन्न करने के बाद फिर ये जो है मुनि बन गए। तो भरद्वाज मुनि है ना, बड़े प्रसिद्ध है भरद्वाज मुनि है, रामायण में काफी इनका नाम है भरद्वाज मुनि का है ना। तो ये भरद्वाज मुनि वही है, मतलब बृहस्पति के पुत्र हैं ये, और भरत महाराज ने इनको अपना पुत्र स्वीकार किया था। तो ये तो भरत के वंश, भरत के ही मतलब ये पुत्र माने जाते हैं भरद्वाज मुनि। तो भरत महाराज का चरित्र बहुत ही जो है प्रभावशाली है। ये भी कहा जाता है कि जब ये बालक था जंगल में है ना, तो निडर होकर के शेर को पकड़ता था, शेर के दांत गिना करता था है ना, ऐसा भी उल्लेख कुछ शास्त्रों में आया है। तो ये जो है महाराज भरत के वंश में पैदा होकर के अर्जुन के लिए उचित नहीं है युद्ध को छोड़ना। ये बहुत अपकीर्तिकारी है, इससे बहुत अपकीर्ति होगी है? तो यहां पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि दोनों ही तरह लाभ होगा। अब देखिए आगे श्लोक संख्या 37 में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जित्वा वा भोक्षसे महिम, अगर जीतोगे तो मही भोगोगे। प्रति भोगोगे। तस्मात तिष्ठ कौन्ते, इसलिए हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र तुम खड़े हो युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके, युद्ध ही करना है, युद्ध ही करना है, या तो मरना है या फिर मारना है, है ना, मरना या मारना। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं, हम नहीं मारना चाहते हैं, है ना, हम नहीं मारना चाहते हैं और ये हमको मार डाले, नहीं वो ठीक नहीं है, है ना। और भी देखिए इसमें जो भगवान ने कहा है आज के श्लोक में, आज के श्लोक निकालिए, भगवान कह रहे हैं यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार जो अपने आप ही प्राप्त हुआ है, है ना, तो स्वर्ग का द्वार। जबकि अर्जुन ने कहा था नरक का द्वार, अर्जुन ने कहा था कि इस युद्ध के द्वारा हमको नरक की प्राप्ति होगी और असीमित काल के लिए हमको नरक में जाना पड़ेगा, तो कितना अंतर है अर्जुन के कथन में और भगवान के कथन में, कितना अंतर है। भगवान कह रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना, और नरक की प्राप्ति किसमें होती है भगवान आगे बताते हैं 16वें पृष्ठ संख्या 766। भगवान कह रहे हैं नरक का द्वार क्या होता है, तीन प्रकार का है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, इदम द्वारम, ये नरक का जो तीन प्रकार का द्वार जो आत्मा का नाश करने वाला है वो क्या है, कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ, ये जो है तीन प्रकार का नरक का द्वार है, है ना, काम क्रोध और लोभ, तो तीन नरक का द्वार कहा जाए तीन प्रकार से। तो जो व्यक्ति लोभ लोभ लोभी होता है बहुत ज्यादा, तो वो फिर पाप कर्मों में लग जाता है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है तो फिर वो पाप कर्म में लग जाता है। जो काम है तो ये पाप कराता है, काम क्रोध लोभ, ये मनुष्य के ज्ञान को ढक देते हैं, है ना। तो भगवान तीन प्रकार का नरक का द्वार बतला रहे हैं। वैसे अगर और सूक्ष्म देखा जाए तो छह प्रकार के नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, छह। क्योंकि भगवद गीता संक्षिप्त ज्ञान है इसलिए भगवान तीन बतला रहे हैं, लेकिन अगर और गहराई से देखा जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भी है, है? मोह मद और मत्सर, मत्सर माने ईर्ष्या, मद मद माने घमंड, अपने को बहुत बड़ा समझना, घमंड है ना, तो घमंड के कारण व्यक्ति पाप करता है ना, और मोह, मोह के कारण व्यक्ति पाप करता है ना। अब अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते हैं इसका कारण क्या है, मोह, हाँ परिवार का मोह है ना, तो मोह के कारण व्यक्ति पाप करता है। और भगवान ने पूरी भगवद गीता में जो उपदेश दिया है अर्जुन का मोह दूर करने के लिए, अर्जुन का मोह दूर करने के लिए, है ना। देखिए अर्जुन का मोह है भगवान बताते हैं, देखिए 18 भगवान ने पूछा ना, इसका मतलब पूरी गीता भगवान जो अर्जुन को सुना रहे हैं वो किसे सुना रहे हैं, मोह को दूर करने के लिए, मोह, ये मोह है ना, मोह समझते हैं क्या है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मोह है, ममता, मोह और ममता, मम मम माने मेरा मेरा, है ना। तो इस कारण से व्यक्ति जो है पाप करता है। अभी युद्ध ना करना ये एक अपने आप में पाप कर्म है, अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते हैं ये अपने आप में एक पाप कर्म है। क्यों आप कहेंगे इसमें क्या पाप है, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करना चाहते, युद्ध नहीं करते हैं, इसमें कोई कर्म तो हुआ नहीं, युद्ध नहीं कर रहे हैं तो फिर पाप कर्म कैसे हुआ, क्षत्रिय का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ठीक है, धर्म का पालन नहीं कर रहे, लेकिन पाप कर्म कैसे हुआ? भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, है ना? ठीक है, फिर भी और हम अगर समझाएं कि पाप कर्म कैसे हुआ, ये पाप कर्म कैसे हुआ, तो यहां आप कह सकते हैं कि पाप कर्म कैसे हुआ, क्योंकि ये जो अधर्म कर रहे हैं उस अधर्म का साथ दे रहे हैं, अर्जुन अधर्म को आश्रय दे रहे हैं, है कि नहीं? और इस प्रकार के अधर्म को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि और भी लोग करें। अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? किसी की जमीन छीन लेना, किसी का धन छीन लेना, किसी की स्त्री छीन लेना, किसी को जहर देना, किसी के मकान में आग लगाना, किसी को शस्त्र से मारना, और छह प्रकार के जो अधर्म है ये इन्होंने किए। अगर इनको दंड ना दिया जाए, अगर इनको ना मारा जाए, तो पूरी दुनिया में ये प्रमाणित हो जाएगा कि पांडव जैसे श्रेष्ठ लोगों ने ऐसे धर्म को आश्रय दिया है। तो फिर ठीक है, हम भी करते हैं, आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए, आप हमको दंड मत दीजिए। आगे चल करके जो श्रेष्ठ राजा होंगे, है ना, तो उनको फिर दिक्कत होगी किसी व्यक्ति को दंड देने में, क्योंकि श्रेष्ठ पांडव हैं जिन्होंने ऐसे धर्म में कोई दंड नहीं दिया, है ना। तो आगे चल करके जो निर्दोष और बेचारे निर्बल लोग होंगे, उनकी जमीन छीनी जाएगी, उनकी स्त्री छीनी जाएगी, उनका धन छीना जाएगा, उनको जहर खिलाया जाएगा, है? उनको शस्त्र से मारा जाएगा, उनके मकान में आग लगाई जाएंगी, ये होगा। तो ये जो है इसका, इस अधर्म का जो पाप है वो तुमको लगेगा। लेकिन अगर इनको दंड दिया जाए, है? तो ये धर्म की स्थापना हो जाएगी, धर्म की स्थापना हो जाएगी कि देखो ये परिणाम हुआ उनका। उन्होंने द्रौपदी पांडवों की पत्नी के साथ उन्होंने इस तरह से जो व्यवहार किया था उसका ये परिणाम हुआ, मारे गए, है ना। तो ये, तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि तुम्हें पाप लगेगा। अगर इनको मारा जाएगा तो उनका भी कल्याण और तुम्हारा भी कल्याण। अगर ये मारे जाएंगे अभी, इनको अभी दंड दे दिया जाएगा इसी जीवन में, अगर इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा तो यम दंड से बच जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे, यमराज के दंड से बच जाएंगे, तो इनका बहुत फायदा है। अगर इनको मार दिया जाए युद्ध में तो इनका बहुत फायदा है, और तुम भी धर्म की स्थापना कर रहे हो, पूरा संसार ये समझ लेगा कि ये नीच कर्म है, ये गलत काम है, इसका परिणाम बुरा है ना। तो इस तरह से भगवान जो करते हैं तो उसमें सबका कल्याण है, सबका कल्याण है, पूरी सृष्टि का कल्याण है भगवान का। तो ये मोह है, धृतराष्ट्र का मोह था, धृतराष्ट्र का अपने पुत्र के प्रति मोह था, दुर्योधन के प्रति, इसलिए वो भी पाप का भागी है, है? तो आप कह सकते हैं धृतराष्ट्र ने तो कोई पाप नहीं किया, धृतराष्ट्र ने क्या किया? हाँ, क्योंकि उसने तो खुद मकान में आग नहीं लगाई, ना उसने जहर दिया, ना उन्होंने उनकी पत्नी का जो है अपमान किया, है? लेकिन धृतराष्ट्र ने विरोध नहीं किया। मोह के कारण व्यक्ति जब किसी कार्य का विरोध नहीं करता है तो वो पाप लगता है और नरक की प्राप्ति होती है। मोह में यही होता है, मोह में व्यक्ति पाप नहीं करता लेकिन तो भी उसे पाप लगता है, क्योंकि वो मोह के कारण किसी बात का विरोध नहीं करता है। चलो ठीक है, अपना लड़का है, है? तो क्या किया जाए, है कि नहीं? तो इसको मोह कहते हैं। तो इस तरह से जो है अगर देखा जाए तो छह नरक के द्वार है। और देखिए श्लोक संख्या 73 आगे वाला, इसमें अर्जुन ने कहा है, अर्जुन ने क्या कहा है? मोह नष्ट हुआ मेरा, अर्जुन ने कहा है कि मेरा मोह नष्ट हुआ, अर्जुन क्या करें, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तुत् प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मी मेरे संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई, अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। वास्तव में तो मोह होना चाहिए भगवान के प्रति, जीव का मोह जो है अगर भगवान के प्रति हो है? तो वो जो है कल्याणकारी है, है? इसलिए कृष्ण का नाम है मोहन, कृष्ण को कहते हैं मोहन, है ना। मोहन का मतलब क्या है, जो मोहित करे, मोह में डाले, है ना। लेकिन ये मोह दिव्य है, जो अर्जुन का मोह है ये सांसारिक मोह है ना। और जो माता यशोदा है, नंद है, इनका जो मोह है ये क्या है, आध्यात्मिक है, ब्रजवासियों का। ब्रजवासी कृष्ण के प्रति मोहित है, तीव्र मोह है। गोपियों को भी कृष्ण के प्रति तीव्र मोह है ना। मोह में भी अंधे है, मोहांध है ना। मोह के कारण भी व्यक्ति का ज्ञान ढक जाता है। और कृष्ण में इतना मोहन शक्ति है, इतना मोहित करते हैं कि ब्रजवासी सब भूल जाते हैं क्या, इस ज्ञान को कि कृष्ण परमेश्वर है, इस ज्ञान को भूल जाते हैं। मन मोहन कृष्ण को कहते हैं, मन मोहन, मन को मोहित करते हैं, है ना। तो ये भगवत गीता ब्रजवासियों के लिए नहीं है, ब्रजवासी बहुत ऊपर हैं, है ना, क्योंकि उनके मन को कृष्ण ने मोहित किया हुआ है। लेकिन भगवत गीता अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के मन को संसार ने मोहित किया हुआ है। तो ये जो मोह है ये वहां से हटा करके कहा।